ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि और सत्संग और यहाँ में क्या अंतर है। यहाँ पर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई जाती है, यहाँ पर एम एंड ऑब्जेक्ट है, और सत्संगों में ना तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं ना कोई एम एंड ऑब्जेक्ट है, केवल रामायण भागवत शास्त्र आदि सुनते हैं और बस उसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि देखो उस मेले और इस मेले में कितना अंतर। ये इतना सुंदर मेला है बाप और बच्चों का, परमात्मा और आत्माओं का मेला है। ये मेला सारे कल्प में केवल एक ही बार होता है। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले हैं, कितना खर्च करते हैं और कितने गंदे हो जाते हैं, और इस मेले में तुम स्वच्छ बनते हो। और तीसरी बात बाबा ने, आज जो संसार की हालत क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं। उस समय बाबा ने पहले से बता दिया था कैसे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसके कंपैरिजन में फिर बाबा ने सत्युग का बताया कि जब आप सत्युग में जाएंगे तो उसे कहा जाता है खीर खंड। तो बच्चों को भी क्या बनना है, खीर खंड जैसा बनना है, आपस में बहुत प्यार से होकर के रहना है। फिर सत्युग में क्या होगा, आज तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही और सुनते ही मुख में पानी आ जाएगा, क्या क्या होगा, अच्छे अच्छे फल होंगे, वहाँ रहना कितना अच्छा होगा, सब प्रकार की चीजें होंगी। तो बाबा ने वो याद दिलाया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 28 मई 2025। मुरली का मुख्य हैडी, मीठी बच्ची अभी ड्रामा का चक्र पूरा हुआ है, तुम्हें खीर खंड बन नई दुनिया में आना है। मीठी बच्ची अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें खीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब खीर खंड है और यहाँ पर सब लून पानी। लून पानी मीन्स आपस में लड़ते झगड़ते ना, तो बाबा कहते हैं वहां सब खीर खंड है, यहाँ लून पानी है। आज का प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो। तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो। इसका उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहती है बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो। पहले बाबा ने ज्ञान दिया कि तुम कौन हो, तो बाबा ने कहा आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अभी करना क्या है, बच्चे तुम नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। आज का गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख भरे दिन आएंगे। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सत्युग हो जाए। अब कौन कहेगा दिल होता है जल्दी सत्युग हो जाए, जो कहते जल्दी सत्युग हो जाए वो हाथ खड़ा करे, बस थोड़े से, क्यों बाकी नहीं चाहते, जो कहते नहीं संगम युग और बढ़ जाए वो हाथ खड़ा करो सारे, क्योंकि संगम युग में तो बाबा के साथ मिलते रहेंगे, सतयुग में ना बाबा मिलेगा, खुश तो होंगे, सब प्रकार की प्रलब्ध होगी, लेकिन संगम युग में ब्राह्मण परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, बाबा का साथ है, तो इससे और क्या चाहिए। कभी कभी कई बच्चे बाबा को कहते थे बाबा जल्दी विनाश कराओ, तो बाबा क्या कहते, बच्चे तुम क्या चाहते, मैं चला जाऊं, तुम यही चाहते ना मैं चला जाऊं, मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन जब तक हो उतना तो बाबा के साथ का लाभ लो ना। तो आज बाबा क्या बता रहे हैं, दिल होती है कि सतयुग जल्दी हो जाए तो इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा धीरे धीरे चलने वाला, ड्रामा अपने टाइम पर ही चलेगा, धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरे देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं, बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे कि दुनिया बदल ले। शुरू में बाबा कहते थे कि सतयुग आएगा, कलयुग विनाश होगा, ब्रह्मा कुमारियां बताती थी, लोग उसको अशुभ मानते थे। अब बाबा ने पहले ही कह दिया, तो बड़े बड़े लोग बाहर के लोग कहेंगे, और अभी हम नहीं कहते हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं, अभी तो विनाश जरूर होगा क्योंकि हालात ऐसी है ना। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे कि दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं पोप जैसे, वे भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा फिर पीस कैसे होगी, दुनिया तो बदलेगी लेकिन शांति कैसे स्थापन होगी। अच्छा फिर पीस कैसे होगी, इस समय तो सब लून पानी है, अभी हम खीर खंड हो रहे। ईश्वरीय परिवार इतना बड़ा परिवार है, आपस में मिलकर के चलते हैं, तो बाबा को भी लगता है आपस में खीर खंड हो रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं, तैयारियां हो रही है। उस समय की तैयारी और अभी की तैयारी में कितना अंतर है। बाबा के टाइम तो इतना नहीं था, तो बाबा को तो पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो बाबा के अभी देखो कितनी जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है, पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, नई दुनिया सो पुरानी और पुरानी सो नई दुनिया बनेगी, इसको दुनिया का चक्र कहा जाता। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, बाबा कहते नई के बाद पुराना, पुराने के बाद नया, तो बाबा कहते इसको चक्र कहा जाता है जो फिरता ही रहता है। ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष बाद नई दुनिया होगी, वही तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके। ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष के बाद नई दुनिया होगी, बाबा कहते नहीं, तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो। भक्ति बिल्कुल अलग है, भक्ति मार्ग का कनेक्शन किसके साथ है, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग का कनेक्शन है रावण के साथ, भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है और ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो, अभी बाप को बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है, बुलाते किस लिए हैं, पावन बने सुख भोगे, इसलिए बाबा कहते नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना, बाबा कहते बच्चे हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, सब जान गए हैं कहाँ जाना है, अभी घर चलना है। ये नाटक पूरा होता है, हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाना। अच्छा 84 जन्म वाले कौन है, हाथ खड़ा करें, जो 84 जन्म वाले हो तो हाथ खड़ा कर दें, और जिनको नहीं लेने हैं 84 वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, है? वो तो आएंगे 84 में आएंगे तो आप पे आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाना है, ये नाटक पूरा होता है, हम फिर सचिव में जाएंगे, 84 जन्मों का चक्कर लगाना है, स्व आत्मा को दर्शन होता है, सृष्टि चक्र का अथवा आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। तो आज का टाइटल क्या है? त्रिनेत्री। क्या बने? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है, ज्ञान का नेत्र और कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, राज है। पहले त्रिनेत्री बने तो बाबा कहते तुम बच्चे त्रिनेत्री भी हो और त्रिकालदर्शी भी हो, तो वो लोग त्रिनेत्री नहीं है। पहले त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बनेंगे, त्रिनेत्री बने तब फिर त्रिकालदर्शी भी बने। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो। बाबा नाम रूप से न्यारा बनने के लिए, अशरीरी बनने के लिए, बार बार आत्मा अभिमानी बनने के लिए पक्का करा रहे हैं। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। क्या समझना? आत्मा अशरीरी, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो कि हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं, अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था, द्वापर की शुरुआत में इतना नहीं था, इतना दुख बढ़ गया तो बहुत याद करते हैं, लेकिन प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से राजाएं आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए। पहले भारत में एक मत था, राजाएं थे, बहुत प्यार से रहते थे, बाहर से आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, अन्य आए, आपस में राजाओं को लड़ा दिया तो दुखी दुख हो गया, फूट पड़ गई और राज्य छीन लिया। राजा लोग आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं, सतयुग में एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसी एक ही डायनेस्टी कोई की होती नहीं। बाबा कहते हैं कितने भी धर्म संस्थापक आए सबकी एक डायनेस्टी नहीं होती है, सतयुग में केवल एक ही डायनेस्टी होती है, ऐसी एक ही डायनेस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। ये सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुने। वहां सत्संग में क्या सुनेंगे? रामायण सुनेंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं सुनते ना। तो बाबा कहते और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर भी नहीं सुने। हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनना तो क्या, उसका अक्षर भी नहीं सुनेंगे। वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं, यहाँ ये बातें है ही नहीं। यहाँ कोई कहेगा रामायण सुना दो, ये सुना दो, यहाँ तो केवल ज्ञान की बात है ना। तो बाबा कहते यहाँ ये बातें है नहीं, यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा क्या सुनाते हैं? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचते ऊंच हमारा बाप है, नशा चढ़ना चाहिए। हमारा बाप कौन है? ऊंचते ऊंच है, जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं। बाप का शुक्रिया है। क्या बोलेंगे बाबा को? बाबा आपका शुक्रिया है, आपने हमें सारा ज्ञान दिया है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक तो आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाल, मनुष्यों के झाल में ऊपर में कौन है? कौन है मनुष्यों के झाल में? ऊपर में ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। मनुष्यों के झाल में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच से ऊंच बाप रहते भी हैं परम धाम में, फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्मा जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। शरीर यहाँ रहेगा, वहां जाकर के सूक्ष्म वतन में आत्मा सूक्ष्म धारण शरीर धारण करती है, लेकिन शरीर तो नहीं जाता ना। तो बाबा कहते हैं शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाति कैसे हैं? उनको कहा जाता है दिव्य नेत्र। सूक्ष्म वतन में जाने के लिए दिव्य नेत्र और तीसरा नेत्र। जाति कैसे उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र? दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते। पहले शुरू में जब जाते थे तो उसको ध्यान कहते, ध्यान में सूक्ष्म लोक में गए हैं। तो बाबा कहते दिव्य दृष्टि कहते हैं या ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं कि शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनमें से कोई समझ ना सके शंकर ने आंख खोली विनाश हो गया। बाबा कहते कैसे समझ सकेंगे? अब इनमें तो कोई समझ ना सके। अभी तुम जानते हो विनाश कैसे होता है? कौन करता विनाश? यादव करते ना, कौरव यादव करते, कौन करता? बाबा ने कहा विनाश ड्रामा अनुसार ही होता, कोई नहीं करता है, नहीं तो उस पर दोष आ जाएगा। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं ये भी ड्रामा अनुसार उसका नाम रख दिया। शंकर भी कुछ नहीं करते हैं, ये भी ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है। तो समझाना पड़ता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को, और विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते ड्रामा है। स्थापना तो चलो ब्रह्मा द्वारा हुई, पालना विष्णु द्वारा, शंकर कोई विनाश नहीं करता, ये तो केवल ड्रामा है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुआ तो विष्णु को भी पूरे हुए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु बनता है। तो कहेंगे ब्रह्मा के 84 जन्म पूरे हुए, तो साथ साथ क्या कहेंगे विष्णु के भी 84 जन्म पूरे, क्योंकि वही उसी का रोल है ना। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का पार्ट बहुत पार्ट है, पढ़ाते हैं। अब शिव बाबा का पार्ट क्या है? बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, फिर पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, साथ ले जाते हैं, सतयुग दुनिया में भेज देते हैं, बहुत सुख देते हैं। तो बाबा का पार्ट तो बहुत बड़ा है। वास्तव में शिव का पार्ट तो बहुत बड़ा है, पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि का ज्ञान कैसे देता? इसलिए बाप समझाते हैं बच्ची प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, बाप को आना पड़ता है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे से सृष्टि चक्र का ज्ञान है। बाबा कहते मेरे को आना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पार्ट मिला हुआ है। कौन सा पार्ट मिला हुआ है? ज्ञान देने का। मैं दूसरे को कोई काम नहीं करता, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है ये तो जब मिले तब पता पड़े, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं जब ज्ञान मिले तब तो पता पड़े ना, कुछ जानते हैं मिला ही नहीं तो अर्थ कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं, हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। फिर आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, बाबा ने कहा मेरा ये धंधा है क्या, तुम पाप करते हो, सारी दुनिया के मनुष्य आत्माएं पाप करते हैं और मैं बैठ करके एक एक के पापों को देखता रहूं, क्या मेरा यही धंधा, मेरा काम तो है पतितों को पावन बनाना। तो बाबा कहते देखो, बाबा कहते ये मैं धंधा नहीं करता। अब कोई कहे ना ईश्वर जानता है, दुनिया में कहते ना ईश्वर देख रहा है, बाबा कहते ईश्वर तो क्या देख रहे, तुम खुद ही देख रहे हो। पाप करने वाले को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता हूँ, ये तो जैसा जो कर्म करते हैं उनको वैसे खुद ही सजा भुगते हैं। मैं किसको नहीं देता हूँ, मैं कोई प्रेरणा से सजा दूंगा, ना मैं सजा देता हूँ ना मैं कोई प्रेरणा से सजा दूंगा, अपने कर्म का फल वो आपे ही भोगते हैं। मैं प्रेरणा से तो करूं जैसे कि मैंने सजा ली। और फिर दूसरी बात, बाबा तो रहम दिल है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन। बाबा कहते अगर मैं प्रेरणा से कर दूं तो मेरा नाम आ जाएगा कि मैंने सजा दी। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे कि मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो ये भी तो दोष है ना। देखो दुनिया में भी कहते मारने वाले को, देखने वाले को, बताने वाले को भी दोष पड़ता। मारने वाले ने मारा लेकिन जिसने गाइड किया उसके ऊपर भी तो दोष आता है ना। तो बाबा कहते हैं कहते हैं कोई को कहना कि इनको मारो ये भी तो दोष है ना, कहने वाला भी फंस पड़ेगा। जो उसको मोटिवेट किया वो भी उसको भी पकड़ते हैं, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। तो बाबा कहते शंकर भी प्रेरणा नहीं देता विनाश के लिए, अगर वो देगा तो वह भी फंस जाए, शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने आया हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख हरो। मैं थोड़ी दुख देता हूँ, विनाश मैं कराऊं, पतित बनाऊं, बाबा कहते मैं थोड़ी करता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो क्या होना चाहिए, माताएं बताओ, भट्टी वाले बताओ, तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो क्या होना चाहिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी में बाबा कहते थे खगिया मारो, खगिया मारो, जैसे कोई बहुत खुश होता है ना कितना उसकी सारी बॉडी हिलने लगती है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है, कौन सी डायरेक्ट भाषण आती है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो तो वहां कोई आत्माओं और परमात्मा का मेला नहीं गए। मधुबन में आते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि हम बाबा के पास बैठे हैं। बार बार मधुबन में आने का मन खींचता है ना, है मन करता था ना कि मधुबन में आए। जिनका किया हाथ खड़ा करो, भट्टी वाले सब हाथ खड़ा करो, भट्टी वाले, अच्छा लगा ना मधु बना के, कहा लगता ना बाबा हमको पाल रहे हैं, बाबा हमारे को अनुभव करा रहे हैं, कितनी पालना कर रहे हैं। तो ये सब बाबा कहते यहाँ पर क्या है, आत्माओं और परमात्मा का मेला, और सेंटर पर क्या है, आत्माओं और आत्माओं का आपस में मेला। तो बाबा कहते हैं ये बाबा बता रहे इसको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो तो वहाँ कोई आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे, आत्मा और परमात्मा का मेला यहाँ लगता। बाबा के टाइम पर आते थे बच्चे, बहुत अच्छे अनुभव करते थे। अभी भी भल बाबा अव्यक्त हुए, बाबा कहते मैं तो बच्चों की पालना कर रहा हूँ, अभी बाबा गए नहीं, बाबा तो बच्चों को देखते हैं, पालना करते हैं, ऐसा अनुभव होता है ना। भट्टी के भाई बताओ जिनको होता आज खड़ा करो, बस थोड़े से ही है, थोड़ों को अभी हुआ नहीं है ना, अभी नए नए आए ना, जिनको हुआ है वो हाथ खड़ा करो, सोच सोच के अभी थोड़ा अनुभव करना है, अभी किया नहीं है ना। ठीक है, बाबा कहते हैं ये भी तुम जानते हो कि मेला लगा हुआ है, बाप बच्चों के बीच में आए हैं। दिखाई दे रहे बाबा कहाँ है? बाबा हमारे सामने हैं, बोलो। बाबा बच्चों के बीच में आए हैं। जब बच्चे इकट्ठे होते हैं बाबा वहाँ वतन से बच्चों के बीच में आ जाते हैं, बच्चों से मिलन मना के चले जाते हैं और बच्चे तो देखते रहते हैं बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ। तो बाबा आज क्या बता रहे हैं, बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्मे सब यहाँ है, आत्मा ही याद करती है कि बाप आए, ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर के सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं, ये मेला अच्छा हुआ ना, कि कितना सुंदर मेला, कितनी प्राप्ति होती, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे भी बर्बाद करते हैं, मैले भी हुए पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, कई चीजें गुम हो जाती है, कईयों के तो परिवार बिछड़ जाते हैं, क्या से क्या हो जाता है, पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। उनको मायावी आश्री मेला कहा जाता है, ये है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है ना, तुम भी आश्री मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। पहले कहाँ थे, क्योंकि आश्रय से ही मिलते जुलते रहना, खाना पीना सब एक जैसा था ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय मेले में, तुम ही जानते हो, क्या जानते हो कि बाबा आया हुआ ना, बाबा बच्चों को साथ ले जाने के, अभी तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, कितने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाए। बाबा कई बार कहते हैं ज्ञान सब सुनाते हैं, धीरे धीरे सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे सुनेंगे, अब सब सुन लेंगे, सब आ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। बाबा के टाइम पर बाबा ने थोड़ा थोड़ा मकान बनाना शुरू किया और बाबा कहते थे बच्चे आएंगे यहाँ पर रहेंगे। बाबा ने खुद खड़े होकर के ट्रेनिंग सेक्शन बनवाया, इधर उस तरह हवाई महल बनवाया, एरोप्लेन बनवाया, तो बाबा कहते थे बच्चे आएंगे रहेंगे। फिर बाबा के बाद दादियों ने भी कितना बनवाया, फिर बनवाने के बाद जितना बनवाते उतना ही कम होता जाता, फिर ज्ञान सौ बना, शांतिवन बना, वहां भी संख्या को लिमिट करना पड़ता है। पांडव भवन के लिए कहेंगे हमको यहाँ आना, यहाँ पर तो संख्या लिमिट होती है और लिमिट संख्या में ही छुट्टी मिलती है। तो बाबा कहते जितने आ जाएंगे फिर इतने मकान कहाँ से मिलेंगे, इसलिए थोड़े में ही बाबा सबको हर प्रकार की अनुभूति कराते और बाबा अपने साथ के अनुभव भी कराते हैं। इसमें मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? अच्छा, जो भट्टी वाले हैं सब ठीक हैं, एकोमोडेशन से ठीक हैं, खुश हैं, कोई ऐसा तो नहीं जिसको लगे कहाँ रह गए। दिल्ली में महलों में रहने वाले और यहाँ आकर के कहेंगे पता नहीं कैसे रख दिया हमको, जो कहते हम खुश है एकोमोडेशन से हाथ उठाओ। ठीक, अच्छा, जो कहते हम खुश नहीं है वो हाथ उठाओ, नहीं चाहिए थोड़ा, वहां तो एसी होता है, वहां तो इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर कमरे होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बाबा का घर तो वहां साधारण है। लेकिन नहीं, जो बाबा का प्यार है वो सब कुछ अनुभव करा। यहाँ सोचेंगे हमको ऐसा मिले, दिल्ली में तो इतनी फैसिलिटीज है और दिल्ली तो बाद पीछे मिलेंगी, भविष्य में तो मिलेगा ही, लेकिन वो फैसिलिटीज इस बाबा के घर के आगे कुछ भी नहीं। बाबा मिला, बाबा के घर में एक रात रहने का मिला, वो भी ओहो सौभाग्य। आपको तो 5 रात रहने को मिलता है, चारों ही टाइम बाबा के चारों धाम की यात्रा करते हैं, बाबा के साथ अनुभव करते हैं, बाबा कितना प्यार करते हैं वो सारा अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा के टाइम पर जब आते थे, पुरानों को मालूम है कैसे आते थे, रहने की जगह नहीं होती थी, सब पट पर सोते थे, लेकिन बाबा का जो प्यार था ना, वो प्यार ऐसा होता था जैसे कि सब कुछ प्राप्ति है। तो इसलिए बाबा कहते कितने भी मकान बना लो, कहाँ भी बना लो, जगह कितनी मिलेगी, जितनी पहले मिलती थी उतनी ही 3 पैर पृथ्वी मिलेगी। इसलिए हर बात में खुश रहना है और संतुष्ट रहना है और क्या करना है, बाबा के साथ का अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, ओह प्रभु तेरी लीला, कौन सी लीला है, सृष्टि के बदलने की लीला, ये है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है, इसलिए हमेशा किसको समझाओ तो पहले क्या समझाना है, पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना क्या, नहीं तो हम कहते स्थापना पालना विनाश। बाबा ने करेक्ट किया, पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना, पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तब ही विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, पहला टाइटल क्या मिला था, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, और अभी का टाइटल हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, हम फिर चक्रवर्ती राजा बनते, चौथा टाइटल हम फिर चक्रवर्ती राजा बनते। ये कोई को पता ही नहीं कि देवताओं ने ये राज्य कहाँ से पाया और उनका राज्य कहाँ गया, नाम निशान ही गुम हो गया। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनको देवता कहेंगे, उनको हिंदू थोड़ी कहेंगे, देवताओं को तो देवता ही कहते ना। लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए, अब इस मेले में आए ड्रामा अनुसार, चांस मिल गया, पहला चांस मिल गया, तो अपने लिए ताली बजाओ ना, जोर से बजाओ, बाबा देखें आपकी ताली क्या। जो मेले में आया खुश है ना, उनका तो दिल खुश तालियां बजाता ही रहेगा, है ना। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार आपको चांस मिला, मेरे को लगता है शायद पहली बार ये ग्रुप आया है सहना, तो पहली बार आया, इतना बड़ा भाग्य मिला। और कल रात को तो प्रकृति भी आपका स्वागत कर रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं थी, तो अच्छा लगा ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार, तो बाबा कहते हैं तब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, ये भी ड्रामा में मूड है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, तुम्हारा जो कुछ भी पाठ चल रहा है फिर कल्प बात चलेगा, ये चक्र फिरता ही रहता है, फिर रावण राज्य में आश्रय पालना, बताओ कहाँ दैवी पालना कहाँ आश्रय पालना का कितना हाल हो जाता है, फिर रावण राज्य में आश्रय पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बने, अब ईश्वरीय परिवार में फिर दैवी परिवार में फिर क्षत्रिय परिवार में होंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो, ये है तो ये भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना, बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं, विष्णु कौन है ये कोई भी बता न सके। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं जगत अम्बा से, कभी धन नहीं मांगते, धन किससे मांगते हैं, महालक्ष्मी से, जगत अम्बा से शक्ति मांगेंगे और प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मांगते हैं, लेकिन धन नहीं मांगते हैं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जगत अम्बा से धन कभी नहीं मांगते, धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की थी इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा, देने वाला तो वह है, जगत अम्बा भी कहाँ से लाएगी, बाबा से लाएगी ना, देने वाला तो वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लक्की हो, अब बताओ बाबा बच्चों को कहाँ बिठा रहे, कंधों पर बिठा रहे, कहते तुम बच्चे बाप दादा से लक्की हो, सिर पे बिठा दिया, क्यों, अपने से ऊंचा बना दिया, तुम बच्चे बाप दादा से भी लक्की हो। देखो जगत अम्बा का कितना मेला लगता, यहाँ अम्बा का मंदिर है ना, बहुत आते हैं, बहुत भगत आते हैं। ब्रह्मा का इतना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया। पूरे भारत के अंदर ब्रह्मा के कोई मंदिर नहीं, एक दो ही मंदिर, एक अजमेर में है, एक खेड़ ब्रह्मा की तरफ है, और कहीं एक छोटा मोटा होगा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर में बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा। अब बाबा राज बता रहे, देवियों के मंदिर बहुत हैं, क्योंकि बाबा बच्चियों को आगे बढ़ाते हैं, इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी जास्ती होती है, तुम लक्की हो ना। अब बाबा कितनी पूजा नहीं होती, देवियों की कितनी पूजा होते, तो बाबा कहते तुम लक्की हो ना। जगत अम्बा के लिए ऐसे ये नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी, परमात्मा के लिए कहेंगे सर्वव्यापी। जगत अम्बा के लिए ये नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी, तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते हैं, मुझे कह देते हैं कण कण में है, कितनी ग्लानी करते हैं। न ब्रह्मा विष्णु शंकर की करते हैं, न किसी की करते हैं, केवल सारी ग्लानी जो बनाने वाला ऊंच उसकी करते हैं। मुझे तो कह देते कण कण में है, कितनी ग्लानी करते हैं, मैं तुम्हारी कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को आगे बढ़ाया, बाबा ने बच्चों को पालना दी। आज जो बच्चे सारे विश्व के सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये बाबा के कारण ही तो हो रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना, भारत माता तो तुम हो। कौन है भारत माता, हाथ खड़ा करो बहने और भाई, क्या कहेंगे, शिव शक्ति पांडव सेना है, पांडव सेना भी साथ हो, पांडवों के बिना भी काम नहीं है। तो बाबा कहते हैं भारत माता तो तुम हो, धर्मी नहीं। भारत माता कहते धर्मी नहीं, धर्मी आदि तो तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते, राज समझा, क्योंकि देवताएं सतयुग में है। तो बाबा कहते इसलिए कहा जाता है कि देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं आते, जब सतो प्रधान धर्मी होती हैं तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है, श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये ख्याल रखना है, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत तो मिलती रहती है, सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन ही मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा ही बनता, सोने में मिलावट होगी तो जेवर भी तो मिलावट वाला होगा ना। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा, खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। अब तुम्हारा कुछ भी मूल्य नहीं रहा, आत्मा में खाद पड़ गई तो कोई वैल्यू नहीं रही ना, अब तुम्हारा मूल्य कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे, 9 कैरेट भी कहो, कभी कभी कहते नो, नो मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते अभी 9 कैरेट कहेंगे। ये मनुष्य से देव, ये बाप बच्चों से रूहान करते दुनिया में किसी को, को तुम पहले ऐसे थे, भी ऐसे बन गए हो, तुम बिल्कुल ऐसे हो गए हो, तो लड़ पड़ेगा। तो बाबा कहते ये सब बातें जो है बाबा बाहर वालों से नहीं करते हैं, बच्चों से रूहान करते हैं, बाप बच्चों से ही रूहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं। तुम तो सुनते सुनते चेंज हो जाते। बाबा के पास जब कोई नए आते थे तो बाबा हमेशा कहते थे, ये समझेगा नहीं, वो तो कहेगा हम आपके गुरु जी से मिल रहे हैं। कोई नए नए आते तो कहेंगे जो आपके गुरु थे ना उनको हमने देखा। कई बार कई आते थे बाबा के टाइम, कहते थे हमको गुरु जी से मिलना है। बाबा कहते थे उनको कह दो यहाँ कोई गुरु नहीं है। अच्छा फिर कहते अच्छा बताओ आपके हेड से मिलना है। बाबा कहते उनको कह दो यहाँ कोई हेड ही नहीं है। फिर कहेंगे अच्छा जो बड़ा है उससे मिला दो। बाबा कहते यहाँ कोई बड़ा ही नहीं है, ये तो परिवार है। तो बाबा कहते बाबा कभी बाहर वालों से नहीं मिलते थे, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं कि किससे मिल रहे हैं, इतनी बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी से मिल रहे हैं, ये उनको पता ही नहीं है। तो बाबा कितने बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अब फिर बाबा बता रहे हैं, अभी देखो वहां पहुंच जाना, वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे। कितने बड़े बड़े महल होंगे भट्टी वालों के, दिल्ली वालों का कितना बड़ा महल होगा वो बता दो, दिल्ली जितना या एनसीआर साथ में मिला के उतना कितना होगा, दिल्ली जितना, जिसको चाहिए वो हाथ खड़ा करे, बस इतना ही है, और उससे बड़ा जिसको चाहिए। अरे माताएं वहां सफाई कैसे करोगे, थक जाओगे, कहोगे इतना बड़ा महल है क्या करे, कैसे घूमे, क्या करोगे इतना बड़ा महल लेके। एक को तो रहना है, जिसको बड़े से बड़ा महल चाहिए वही हाथ खड़ा करे, उसको मेंटेन करना, हाथ भी नहीं खड़ा कर, मेंटेन करना पड़ेगा ना। नहीं देखो, सबको बड़े बड़े मिलेंगे और बहुत बढ़िया मिलेंगे, हीरे जवाहरात होंगे। बाबा तो सदा ही दिल्ली का नाम लेते हैं, दिल्ली राजधानी होगी, कितनी बार मुरली में दिल्ली का नाम लेते हैं। तो दिल्ली वाले भाग्यशाली है, यहाँ वाले भाग्यशाली, अब बताओ यहाँ वाले भाग्यशाली, ताली बजाओ यहाँ वालों के लिए। अच्छा, दिल्ली वाले भाग्यशाली है क्या? अरे आप भी भाग्यशाली दिल्ली राजधानी में पहले बैठने का, अब अपने लिए भी ताली बजाओ। देखो सबने आना है वहां पर, लेकिन उस समय ना दिल्ली नाम होगा, नाम बदल जाएगा, राजधानी सतो प्रधान होगी, सब खुश होंगे, सब एक से मिलेंगे। सबको पुरुषार्थ करना है कि राजधानी में श्री कृष्ण के साथ खेलने का और लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाने का। इसलिए बाबा बता रहे हैं वहां के हीरे जवाहरातों के महल होंगे, स्वर्ग में फिर क्या नहीं होगा, स्वर्ग तो फिर क्या है, वहां के शुभ रस आदि भी तुम पीकर आते, वहां का फल इतना सुंदर, इतना ऊंच, इतना महान, और यहाँ का तो देखो ना फल, आजकल फलों में भी मिलावट है, देखने में बड़ा लेकिन मिलावट, और फलों में वो रस ही नहीं है। तो पहले थोड़ा टाइम पहले भी जो फल होते थे रस होता था, और आजकल तो फलों में कहाँ रस है, वहां के फल क्या होंगे। तो बाबा याद दिला रहे हैं, शुभ रस आदि भी तुम पीकर आते हो, वहां के फल भी इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो वह मिल नहीं सके, सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, जाते हैं सूक्ष्म वतन में, शुभ रस पिलाते हैं बाबा, अनुभव कराते, लेकिन वहां पर ऐसे है नहीं, लेकिन वो अनुभव कराते हैं, सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, यह आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते, इस मेले में स्वच्छ बनते हो, उस मेले में मेले बनते हैं, इसमें इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे यहाँ आते हो तो फ्री ही फ्री हो, है ना फ्री, न घर की चिंता, न खाना बनाने की चिंता, न नौकरी की चिंता, न कारोबार की चिंता। तो आज बाबा वही बता रहे हैं, तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री ही फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई भी फुरना नहीं है, किसको, यहाँ आए सब स्टॉप, फिर जब जाएंगे तो शुरू करेंगे। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है, वहां तो घर बार आदि याद आता है, सेंटर पर जाएंगे, मुरली सुनेंगे, अभी जाना है, टाइम हो रहा है, कभी लेट हो जाता है तो टाइम हो रहा है, अभी जल्दी जाना है। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर जो है याद का अच्छा चांस मिलता है। और इसके बीच में एक बात भी बता दें, सुबह अमृत वेले योग के बाद कई भाई या बहने अकेले अकेले सैर करने चले जाते हैं, जब सैर करने जाते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ा मिलता है जो आपका स्वागत करने के लिए, मालूम है कभी कभी भालू आ जाता है, वो भालू आ जाएगा और आपको देख के खुश हो जाएगा, ऐसा योगी कहाँ मिलेगा, वो आपके पास बहुत प्यार से पहुंच जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि अकेले सैर करने, क्योंकि वो गर्मी के मौसम में बाहर आते पानी पीने के लिए, करते करते कुछ नहीं है, लेकिन अकेले नहीं जाना है, अंधेरे में नहीं जाना है, दूर से वो आते हैं अपना पानी पी करके चले जाते हैं, पानी खाना तो उनको भी चाहिए, क्योंकि उनका ही राज्य है, उनका ही जंगल तो उनका है ना, तो इसलिए वो आते हैं। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते थे अपनी रक्षा सुरक्षा करना भी अति आवश्यक है, अकेले नहीं जाओ, जाओ तो दो चार के साथ ही जाओ, ये बात का ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है, वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। बाबा के टाइम पर ठीक था, रात को 2 बजे उठते थे, अंदर ही अंदर सब रहते थे, अभी तो बाहर भवनों में रहते ना, रात को 2 बजे नहीं, 3 बजे जैसे खुलता उस समय आओ, 4 बजे के टाइम पर आओ, ऐसा नहीं उठ के आके बैठ जाओ फिर मुरली के टाइम थोड़ा माया के पास चक्कर लगा के आ जाए, ऐसा नहीं करने का। इसलिए अपने टाइम पर ही चलो, टाइम पर ही एक्यूरेट करना है। तो बाबा की कि रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते हो, यहाँ तो सहज है, शिव बाबा की याद में आकर बैठो, और कोई याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे जल्दी सो जाओ फिर सवेरे उठो। बाबा के टाइम पर तो रात को बस क्लास पूरा हुआ, सब गुड नाइट करते थे, बाबा से मिल करके जल्दी चले जाते थे, जल्दी उठते थे। अभी तो रात के टाइम भी कई कारोबार करते रहते ना, तो बाबा कहते रात को कारोबार नहीं करे तो जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, 3 से 5 के बीच में आकर बैठो, ठीक है ना। 2 बजे बल उठे लेकिन बैठना कब है, 3 से 5 के बीच आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बाबा देखेंगे सब बच्चे बैठे हैं तो बाबा भी बीच में आ जाएंगे और बच्चे खुश हो जाएंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा भी आ जाए। बाबा अकेले नहीं आएंगे, बच्चे बैठेंगे तो बाबा और दादा दोनों। बाबा हमेशा कहते बाबा अकेला कहीं नहीं जाता, बाप और दादा भी आ जाएंगे। फिर यहाँ और योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ जाएगा, वहाँ करते हैं योग और यहाँ करते हैं तो अंतर है ना, तो फिर यहाँ योग में बैठने का फर्क भी पड़ जाएगा, यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं कि बच्चे उठ सकते हैं, कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है, तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया का। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, खीर खंड होकर रहना है। दूसरा, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए, पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। आज का वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसी सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहे, हद की हो चाहे बेहद की हो, उनको पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है, ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कल भी आप सबको एक बात है कि जब गर्मी का टाइम आता है तो पानी की कमी होने लगती है, बांध भी सूखने लगते हैं, जब तक बारिश आए तो फिर पानी को कहाँ कहाँ से लाना पड़ता है, बहुत दूर दूर से ओड़िया गांव जो पीस पाक की तरफ है वहां से टैंकर कभी कहाँ से लाते इकट्ठा करते हैं। इसलिए ब्राह्मण समझदार हैं, कम से कम पानी यूज करें, और साथ में कि जब बर्तन धोते या हाथ धोते नल ज्यादा नहीं खोलें, जितनी जरूरत है, ऐसा नहीं यूज नहीं करना, यूज करें लेकिन जितनी जरूरत है वो करें। कभी कोई बातें करते रहते हैं, नल खुला ही रहता है, बातें करते रहते हैं, तो इन बातों का ब्राह्मणों का बाबा हमेशा कहते हैं, ब्राह्मण में सब बातों की मर्यादा, सब बातों की इकोनॉमी, इस बात का ध्यान रखना। फिर से बता रहे हैं कि थोड़े दिन की बात है, फिर तो बरसात आएगी ही, लेकिन अभी पानी की थोड़ी कमी होने के कारण सभी को कम से कम पानी का प्रयोग करना है, ताकि सबको अच्छी तरह से पानी मिल सके, इस बात का सबको ध्यान रखना है। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, और याद के बाद भट्टी के भाई बहने बैठे रहेंगे, उनको उनका ग्रुप फोटो होगा, और उससे पहले कुछ डायरेक्शन वो भी बताएंगे। ओम शांति।